أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما بسم الله الرحمن الرحيم سورة آل عمران آيات نمبر 31 آيات نمبر 31 اور آج جو چیپٹر ہم پڑھنے جا رہے ہیں آل عمران کا آپ یہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندے اور اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں سے اپنا پیغام انسانیت تک پہنچانے کا کام لیا ہے اور انہیں یہ اعزاز دیا ہے کہ وہ دنیا کے امام ہیں، ان بندوں کے بارے میں آج اللہ تعالیٰ بات کر رہا ہے۔ بہت امپورٹنٹ لیسن ہے، قرآن کی کا کوئی بھی لیسن ان امپورٹنٹ نہیں ہے، لیکن بعض اسباق اور بعض سبجیکٹس قرآن میں ایسے ہیں جو بزرگوں کی زبان میں ہمیں کان کھول کے سننے چاہیے، کیونکہ اگر ہم کبھی یہ کہیں کہ یہ بات ہمیں نہیں پتہ یا یہ راز ہمیں نہیں پتہ، آپ نے اکثر یہ سنا ہوگا کہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو اللہ کی عطا ہے اور جسے چاہے وہ چن لے اپنے کام کے لیے، اور یہ بات بالکل ٹھیک ہے، لیکن قرآن کے اصول جو استاد جانتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اس قرآن میں کوئی بھی ایسی بات نہیں ہے جو ہمارے لیے فائدہ مند نہ ہو یا جس کا ہماری زندگی میں کوئی پریکٹیکل اپلیکیشن نہ ہو۔ تو ان لوگوں کا ذکر قرآن میں کیا گیا ہے اور بار بار کیا گیا ہے۔ قرآن کا ایک بہت بڑا سبجیکٹ قصص الانبیاء ہے، اور انبیاء کی زندگی کے واقعات ہیں، ان کے بچوں کی پیدائش ہے، ان کی ہجرتیں ہیں، ان کی تکالیف ہیں، ان کی دعائیں ہیں۔ آخر اتنا بڑا حصہ قرآن کا کسی ایسے کام کو تو نہیں دیا جا سکتا جو صرف اللہ کی ایک ایبسٹریکٹ اور رینڈم عطا ہے جو عام انسانوں کو نہیں ہوتی، اور اگر وہ عام انسانوں کو نہیں ہوتی تو پھر یہ سب حالات ہمیں پڑھانے کا اللہ تعالیٰ کا مقصد کیا ہے؟ تو جو قرآن کے اصول سمجھتے ہیں اور جو وحی کے فضائل اور وحی کے مقاصد سمجھتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ان لوگوں کی مثال اس لیے دی گئی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر انسان سے بہت محبت کرتا ہے، اور وہ اس نے انسان کو بہترین سانچے میں بنایا ہے، اور اس بہترین سانچے کو ہم تب چھوڑ دیتے ہیں جب ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتے ہیں، اور اس بہترین سانچے کی طرف اللہ ہمیں واپس لاتا ہے، بار بار واپس لاتا ہے، کبھی سمجھاتا ہے، کبھی ہمارے حالات ایسے ہو جاتے ہیں، کبھی کہیں سے ہمیں ایک ایسی رینڈم ہدایت مل جاتی ہے جو ہم جس کی توقع بھی نہیں ہوتی، ہم اسے ایکسپیکٹ بھی نہیں کرتے۔ تو قرآن میں اتنا زیادہ ذکر ان لوگوں کا اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ دیکھو یہ وہ چنے ہوئے لوگ ہیں، ان کو قرآن کی اصطلاح میں مستفین کہا جاتا ہے، چنے ہوئے لوگ ہیں یہ، اور یہ وہ بلیسڈ لوگ ہیں جن سے میں نے اپنا کام لیا ہے، ہاں تم بھی میرا کام کرنا چاہتے ہو نا، تو ان لوگوں کے حالات سیکھو، ان لوگوں کے حالات پڑھو اور دیکھو کہ ان کا کیا عمل تھا، تم بھی وہی عمل اپناؤ۔ شروع کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل، فرما دیجئے، ان کنتم، اگر تم ہو، تحبون اللہ، کہ تم محبت رکھتے ہو اللہ سے، فاتبعونی، ف پس، اتباع تبع سے نکلا ہے جس کا مطلب ہے کسی کے قدموں کے نشانوں پر پیر رکھ کر ان کے پیچھے چلنا، یعنی اتباع کرنا، پیروی کرنا۔ نی، میری، فاتبعونی، پس میری پیروی کرو۔ کس کی پیروی کرو؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی آتی تھی، تو ان کے اسوہ کی، ان کے سیرت کی پیروی کا کہا گیا ہے، اور جو قرآن پڑھ رہا ہے، جو قرآن پڑھ کے سنا رہا ہے، جو قرآن پہ عمل کر رہا ہے، اور جس کی ہر بات میں قرآن ترجیح ہے، یہ اس کے منہ سے کہا جا رہا ہے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، فاتبعونی، تو میری پیروی کرو، یحببکم اللہ، تم سے محبت کرے گا اللہ، ویغفر لکم، اور وہ بخش دے گا، ذنوبکم، تمہارے گناہ۔ واللہ، اور اللہ، غفور الرحیم، وہ تو بخشنے والا، بار بار رحم کرنے والا ہے۔ وہ کون سا اسوہ ہے، وہ کون سی سیرت ہے، وہ کون سی بات ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں سے ریکارڈ نہیں ہوئی ہوئی، حتیٰ کہ آپ کے غسل کا طریقہ، آپ کے وضو کرنے کا طریقہ، آپ کا اپنے گھر میں برتنے کے طریقے، سب کچھ سیرت کی کتابوں میں ریکارڈ ہے۔ اور وہ ایک، آپ سمجھیں، ایک سپر مین یا ایک پرفیکٹ انسان تھے جن کا اتباع کرنے کا حکم اس آیت میں دیا گیا ہے، اور کنڈیشنل حکم ہے۔ یہ نہیں کہا گیا کہ تم اس کا اتباع کرو ورنہ تم تباہ ہو جاؤ گے، تم پہ عذاب آ جائے گا۔ اللہ کہتا ہے کہ اس اسوہ کی، اس نبی کی جس کو وحی دی گئی تھی، جس کے اوپر قرآن نازل ہوا تھا، تم اس کا اتباع کرو تو میں تم سے محبت کروں گا، جیسا میں محبت کرتا ہوں اپنے ان مستفین سے، ان چنے ہوئے بندوں سے جن کو میں نے چنا ہے اپنا پیغام پہنچانے کے لیے۔ ان کی زندگی میں اور ان کے عمل میں نمونے ہیں تمہارے لیے اگر تم میری محبت پانا چاہتے ہو۔ کتنی یہ خوبصورت بات ہے، کبھی آپ نے سوچا ہے اس بات کو؟ قل، فرما دیجئے، اطیع اللہ، تم اطاعت کرو اللہ کی، والرسول، اور اس کے بھیجے ہوں کی، ارسال کیے ہوں کی۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پس اگر وہ پھر جائیں، فَإِنَّ اللَّهَ، پس بے شک اللہ، لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، محبت نہیں کرتا، دوست نہیں رکھتا انکار کرنے والوں کو۔ رسول کا لفظ یہاں پہ آیا ہے، اور رسول کا اتباع کرنے کو کہا گیا ہے، ان کی اطاعت کرنے کو کہا گیا ہے، اور اس کو دین کا حصہ برابر کہا گیا ہے کہ اطیع اللہ والرسول، یعنی اللہ اور اس کے وہ بھیجے ہوئے بندے، اس کے وہ مستفین جن کے ذریعے اس نے پیغام بھیجا ہے، ان کی اطاعت کرو، پھر اگر وہ پھر جائیں تو اللہ دوست نہیں رکھتا کافروں کو، یعنی یہ کفر ہے۔ ان اللہ ہستفا، بے شک اللہ نے چن لیا آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین۔ اب یہ مستفین بتائے جا رہے ہیں آپ کو، ٹھیک ہے جی؟ اللہ نے چن لیا آدم علیہ السلام کو، نوح علیہ السلام کو، ابراہیم علیہ السلام کے گھرانے کو، ابو الانبیاء کہا جاتا ہے حضرت ابراہیم کو، و آل عمران، اور عمران کے گھرانے کو، عمران حضرت مریم کے والد کا نام ہے، ان کو تمام جہان پر چن لیا۔ ذریتم، اولادیں ہیں، بعدها من بعد، وہ ایک دوسرے میں سے، ایک دوسرے یعنی ان میں ریلیٹڈ لوگ بھی ہیں آپس میں۔ واللہ، اور اللہ، سمیع علیم، وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اذ قالت امرأته، جب کہا امرأہ، اس عورت نے، اس بی بی نے، عمران، یعنی جب مسز عمران نے کہا، یہ حضرت مریم کی والدہ ہیں، ربی، اے میرے رب، انی، بے شک میں، نظر تو، میں نے نظر کیا، میں نے ایک نظر مانی، لکا، تیرے لیے، ما فی بطنی، جو میرے پیٹ میں ہے، جو میرے بطن میں ہے، یعنی یہ حاملہ تھیں، پریگننٹ تھیں، اور اب یہ ایک نظر مان رہی ہیں کہ اے اللہ، میں نے نظر مانی تیرے لیے جو میرے پیٹ میں ہے، محررن، آزاد کیا ہوا، محرر، حریت جیسے ایک لفظ ہے، حارارا، آزاد ہوا ہوا، فتقبل، پس تو قبول کر لے، منی، مجھ سے۔ بنی اسرائیل کی ایک روایت تھی، اور یہ فلسطین کا علاقہ ہے، جارڈن کا علاقہ ہے، آج کل جو ماڈرن ڈے پیلسٹائن ہے، اور جہاں پہ اسرائیل کی سلطنت ہے ابھی اس دنیا میں، یہ وہ علاقہ ہے کہ جہاں پہ عمران اور ان کی بیگم رہتے ہیں، اور وہ بیگم جو ہیں وہ امید سے ہیں، اور وہاں پہ ایک اچھے گھرانوں کی ایک ٹریڈیشن تھی کہ وہ اپنا بچہ، پہلا بیٹا، یا اس طرح کی ایک نظر مانتے تھے کہ ہم اسے ہیکل کی، جہاں پہ آج کل مسجد اقصی ہے، کہ ہم وہ اس ہیکل کی خدمت کے لیے اور وہاں پہ علم حاصل کرنے کے لیے اس بچے کو ہم آزاد کرتے ہیں، یعنی ہم اس کو دنیاوی فرائض سے، اور اس کو جیسے میں ماں ہوں تو میرا حق ہے، اور یہ باپ ہے، اس کا حق ہے اس کے اوپر، ہم اس حق سے اس کو آزاد کرتے ہیں، اور یہ ہیکل میں، جوڈیزم جو ہے، یہ ان کا جو یہودی مذہب ہے، या दीन जो है वो इसकी खिदमत करेगा और वो तौरा की तालीम हासिल करेगा और वो हिब्रू इनकी जो है जबान इब्रानी वो सीखेगा, तो वो बड़े आलिम होते थे। और ये मोहतरमा जो हैं, ये बीबी जो हैं, उस बच्चे की नज़र मान रही हैं। इन नकानत समी उल आलीम, बेशक तू सुनने वाला और जानने वाला है। फलम्मा, पस जब, वदअत हा, उसने जन्म दिया उसको, वदअत हा। अब ये इस हाँ से पता चलता है कि यहाँ पे लड़की पैदा हुई है। अगर वदअत हु होता तो हम कहते उसने एक लड़के को जन्म दिया। वदअत हा, जब उसने जन्म दिया इस लड़की को, कालत, उसने कहा, इस औरत ने कहा, कालत औरत के लिए है ना, कालू काला एक मर्द है, कालू उन्होंने कहा, कालत इस औरत ने कहा, रब्बी ए मेरे रब, इन्नी बेशक मैं, वदअतुहा मैंने तो जन्म दी है, यानी मैंने तो एक लड़की को जन्म दिया है, उनसा लड़की, वल्लाहु और अल्लाह, आलमु ज़्यादा जानता था, बिमा वदअत जो उसने जना था। अल्लाह ताला चूंकि पेट में तकदीर लिख चुका है और अल्लाह को उसकी आगे आने वाले हालात का बखूबी इलम है और उसको ये भी मालूम है कि ये जो इमरान के यहाँ लड़की पैदा हुई है ये किस कदर कीमती लड़की है और ये आगे तारीख का रुख मोड़ने वाला एक काम करने वाली है, वो चुनी हुई थी। मुस्तफ़ैन का चैप्टर है ना, मैंने आपको बताया था, इन्नल्लाहस्तफा, अल्लाह ने चुन लिया, और उसमें आले इमरान का जिक्र आया है। तो आले इमरान में सबसे पहले अब ये बच्चा पैदा हो रहा है, आले इमरान है ना, तो इमरान का ये बच्चा या बच्ची पैदा हो रहा है और ये कहानी चल रही है। तो देखिए, पूरे सूरत का बैकग्राउंड आपने दिमाग में रखना है। जो चैप्टर, जो रुकू पढ़ा जा रहा है, उसका मरकजी ख्याल जो है वो मुस्तफ़ैन है, अल्लाह के चुने हुए बंदे। और बात यहाँ से शुरू हुई है कि अगर तुम मुझसे मोहब्बत करते हो, मेरी मोहब्बत चाहते हो, तो मेरे इन चुने हुए बंदों से और मेरे इन रसूलों से मोहब्बत करो और इनके उस्वा की अताअत करो। ठीक है जी, पूरा बैकग्राउंड आप जहन में रखें, तब आपको ये बात समझ आएगी, वरना ये आपको किससे कहानियां नजर आएंगे। तो खातून कह रही हैं कि मैंने तो लड़की को जन्म, क्योंकि हैकल में लड़के एक्सेप्ट होते थे, वो आलिम बनते थे, आगे लड़कियां नहीं होती थी वहां पे। तो अल्लाह कह रहा है कि अल्लाह खूब जानता था जो उसने जना है। वलैस ज़कर, और नहीं है एक लड़का, कल उनसा बेटी की तरह, नहीं है, नहीं हो सकते लड़के लड़कियों की तरह, बेटे बेटों की अपनी क्वालिटीज़ हैं, बेटियों की अपनी क्वालिटीज़ हैं। अब अल्लाह ताला यहाँ पे जो बात समझा रहा है, बहुत केयरफुली आप ये कहानी सुने, कहानी बड़ी ज़बरदस्त है, आप कहानी बहुत इंजॉय करेंगे, लेकिन ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये बहुत बड़ा सबक है। यहाँ पे अल्लाह कहता है कि बेटा बेटी के माने नहीं होता, और हम और आप भी अच्छी तरह जानते हैं बेटों के क्या खूबियाँ हैं और क्या फजाइल हैं और उनके क्या मसाइल हैं, और बेटियाँ जो हैं उनकी क्या बरकत है और किस कदर मोहब्बत है और वो किस कदर बड़ी नेमत होती हैं जिनके यहाँ बेटियाँ होती हैं, हालांकि उनके साथ अपने मसाइल लगे हुए हैं। दरअसल अल्लाह ताला ने मुस्तफ़ैन का एक उसूल अल्लाह यहाँ समझा रहा है कि देखो, मुझे जो काम लेना था आले इमरान से, इमरान के घराने से, वो काम सिर्फ एक लड़की कर सकती थी। उस लड़की के ज़रिए मुझे एक ऐसा बच्चा पैदा करना था, एक ऐसा पैगंबर दुनिया में लाना था जिसने बनी इसराइल की तारीख का रुख मोड़ना था, जिसने इनके जो कुछ ये कर रहे थे और जो ये बन गए थे उसको उठा के उल्टा पटखना था उस बच्चे ने। तो उसके लिए मेरा जो चॉइस थी और उसके लिए जो मेरा जो इंतखाब था वो आले इमरान का घराना था, और उस घराने में भी यसू मसीह तो उसमें भी पैदा हो सकते थे और वो हैकल में जा सकते थे, वहाँ से वो ईसा अलैहिस्सलाम बन सकते थे। लेकिन अब इस कहानी में आपको आगे समझ आएगा, और कुरान में और जगहों पे भी सूरह ताहा है, सूरह मरियम है, मरियम अलैहिस्सलाम, मरियम सैयदा मरियम जो हैं उनके नाम पे सूरत है कुरान में। तो इसलिए ये जो यहाँ पे जिक्र है, ये मुस्तफ़ैन का कॉन्सेप्ट है कि अल्लाह के चुने हुए लोग जो होते हैं, अब अल्लाह के चुने हुए घराने में ये बच्ची पैदा हो रही है और अल्लाह कहता है कि ये लड़का लड़की जैसा नहीं होता, आजकल अपने इर्द गिर्द आप देखें, अगर कुरान हमारी तरजीह हो तो हम बच्ची की पैदाइश पे रोएंगे, हम बच्ची की पैदाइश पे ताने देंगे किसी को, हम ये नहीं सोचेंगे कि हो सकता है ये बच्ची मुस्तफ़ैन में से कोई हो, जैसी दुनिया में इससे पहले तारीख में एक पैदा हो चुकी है जिससे अल्लाह ने अपना एक बहुत बड़ा काम लेना था। व इन्नी, और बेशक मैं, समय तोहा, मैंने उसका नाम रखा मरियम, मरियम। अब ये माँ ही बोल रही है, ये वही डायलॉग चल रहा है जो वो माँ अभी बोल रही है कि इस औरत ने कहा कि या अल्लाह मैंने तो लड़की जन्म दी है, और अल्लाह खूब जानता था जो उसने जना था, और नहीं है बेटा एक बेटी की तरह। और फिर वो माँ की बात की तरफ वापस जा रही है आयत के, इन्नी समय तोहा मरियम, मैंने इसका नाम मरियम रखा। जिन लोगों की तरजीह कुरान होती है वो कभी माँ से बच्चे का नाम रखने का हक नहीं छीनते। देखें कुरान में है ये कि बीबी ने, इमरान की बीवी के हाँ बच्ची पैदा हुई है, और वो एक्सपेक्ट भी कर रही थी कि मेरे पास लड़का पैदा होगा जो मैं हैकल में दूंगी, उस लड़के को आज़ाद करूंगी, तो दुखी तो होगी ये औरत, थोड़ी सी ये डिसअपॉइंटेड भी होगी, और उस दुख में और उस डिप्रेशन में भी बच्ची का नाम ये खुद रख रही है। तो मेरी रिक्वेस्ट है सब सुनने वालों से कि जब बच्चे का नाम रखें तो एक एक दफ़ा दो दफ़ा बच्चे के माँ से, बच्ची या बच्चे की माँ से ज़रूर पूछें कि बेटा हम इसका ये नाम रख रहे हैं। नाना नानी, दादा दादी, फूफी खाला, मामू चाचा, सबको बहुत शौक़ होता है कि नया बेबी आया है हम इसका नाम रखें। कुरान की रूह से ये हक़ माँ का है कि वो बच्चे का नाम सजेस्ट करे। हाँ, हो सकता है माँ ये कह दे कि अबू जी, अम्मी जी, आंटी जी, आप इसका नाम रखें, हाँ हम चाहते हैं कि आप इसका नाम रखें, कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन माँ से ज़रूर पूछा जाए क्योंकि ये कुरान में है कि मैं, वो खातून ने बच्ची का नाम मरियम रखा। वह इन्नी उईज़ुहा, और मैं इसको पनाह में देती हूँ, वज़ुर्रियतहा, और उसकी औलाद को, मिनश शैतानिर रजीम, शैतान मर्दूद से। यानी बच्ची को माँ ने पैदाइश पे दो तोहफे दिए, एक उसका नाम रखा, दूसरा उसको शैतान मर्दूद से उसके लिए पनाह मांगी कि ये बच्ची जो है, और फिर ये भी उसने कहा क्योंकि बच्ची ने आगे नस्ल चलानी है, तो जैसे ही बच्ची पैदा हुई है ये माँ उसकी नस्ल के लिए भी दुआ कर रही है। किस कदर ये कीमती बात है, ये हम कितना अपनी बच्चियों को बताते हैं, बेटा जी कुरान में ये है। ये जन्नती औरतें जो हैं ना, फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा है, मरियम है, फिरौन की बीवी आसिया है, इनके हालात कुरान में हैं, इनके बारे में हमें एजुकेट होना चाहिए। हम तो यही पूछते रहते हैं औरतों को जन्नत में क्या मिलेगा, हमारे तो इल्मियत बस इसी कदर है कि हम तो किसी पार्सल का इंतज़ार कर रहे हैं जो TCS में हमें जन्नत मिलने वाली है, आने वाली है, वहाँ पे हमें क्या मिलेगा, क्योंकि हमने तो सिर्फ हूरों के बारे में सुना हुआ है, और वो भी पता नहीं कहाँ से सुना है, कुरान तो नहीं पढ़ा हुआ, ना हमें समझ आता है, ठीक है ना जी। तो देखें आप, ये खातून जो हैं बच्ची की पैदाइश से पहले इन्होंने अपने बच्चे को एक हिबा किया और एक बच्चे की नज़र मानी कि या अल्लाह मुझे सेहतमंद बच्चा दे तो मैं इसे तेरी खिदमत में दूंगी, मैं इसे आज़ाद कर दूंगी। ये मन्नत मानी थी उस इमरान की बीवी ने, मरियम की वालदा ने, और जब बच्ची पैदा हो गई तो दुख के बावजूद, क्योंकि ये लड़का एक्सपेक्ट कर रही थी, इस आयत से हमें ये समझ आता है, तो ये लड़का मांग रही थी, लेकिन लड़की पैदा हो गई, फिर भी उन्होंने उसके लिए दुआ की और उसका नाम रखा। और दुआ सिर्फ उसके लिए नहीं की, उसकी औलाद के लिए की, और क्या दुआ की कि मैं शैतान मर्दूद से इनके लिए पनाह मांगती हूँ। फतकब्बलह, पस कबूल किया उसको, हा जहाँ पे हा आता है ये मुअन्नस का सीखा है, पस कबूल किया उस बच्ची को रब्बुहा उसके रब ने, बेकबूलिन एक कबूल करना, हसनिन अच्छी तरह। तो अल्लाह ताला ने उनकी मन्नत कबूल की, यानी ये बच्ची जो थी ये अब हैकल की खिदमत के लिए और इब्रानी और तौरा की तालीम के लिए ये बच्ची हिबा की गई। ये यानी कि उनके दिल में ये बात आई कि बच्ची है तो क्या हुआ, मैंने मन्नत तो मानी है और ये बच्ची मैं हिबा करूँगी। वह अम बताहा, ये नबता, नबाता जिसे नबातात भी निकला है, उगना, ठीक है जी, परवान चढ़ना, डेवलप होना। वह अम्बतः और परवान चढ़ाया उस बच्ची को नबातन एक बढ़ोतरी एक ग्रोथ हसनन बड़ा खूबसूरत अच्छी तरह यानी ये बड़ी खूबसूरत बच्ची थी और फिर ये यानी उस परवान भी ये बड़ी अच्छी तरह चढ़ी हर लिहाज से तरबियत अच्छी हुई इसकी और ये नेचर की भी बहुत अच्छी बच्ची थी और ये शक्ल की भी बड़ी खूबसूरत बच्ची थी। इन जनरल भी उस इलाके के लोग बड़े खूबसूरत होते हैं। वकफ फलाहा और कफालत दी इसकी कफालत की इसकी जकरिया ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम ने। अब हिब्रू रिवायात से हमें ये मालूम है कि ज़करिया अलैहिस्सलाम जो हैं ये सैयदा मरियम के खालू थे और ये उस वक्त हैकल में सब जो आलिम थे वहाँ पे तौरा के ये उनके हेड मास्टर थे या आप समझें कि वो सबसे बड़े आलिम थे या इमाम थे उनके। तो हज़रत मरियम के हैकल में दिए जाने का किस्सा भी कुरान में मौजूद है कि इनको वहाँ दिया गया और फिर इनकी ये इतनी प्यारी थी और बहुत ही अट्रैक्टिव बच्ची थी कि इनकी कफालत पे झगड़ा हुआ वहाँ पे जो आलिम थे उनमें ये हुआ किसी ने कहा कि मैं इसका कफील बनता हूँ और मैं इसका कफील बनता हूँ। वो इतनी अट्रैक्टिव बच्ची थी और वहाँ पे फिर फैसला किया गया एक ख़ास मौजज़ा था जो वहाँ पे वकूअ पज़ीर हुआ उसका जिक्र कुरान में है यहाँ पे नहीं है क्योंकि उसकी ज़रूरत नहीं है। मुस्तफ़ैन का जिक्र हो रहा है मरियम का किस्सा चल रहा है। तो ज़करिया अलैहिस्सलाम को इनकी कफालत मिली और ये हैकल में चली गईं कबूल कर ली गईं। कुल्लमा दखला जब कभी दाखिल होता था अलैहा उसके पास ज़करिया अल महराब इसकी महराब में ज़करिया अलैहिस्सलाम जब भी आते थे। अब ये तस्वीरें मैं आपको भेजूंगी। ये सैयदा मरियम का जो कमरा है जो हुजरा है और जो इनका दरवाज़ा है वो हैकल की बेसमेंट में मस्जिद अक्सा की बेसमेंट में ये चीज़ें अभी तक मौजूद हैं। वजद आइंदहा वो पाते थे इनके पास रिस्कन इनके पास खाने पीने की चीज़ें पड़ी होती थीं। काला उसने कहा या मरियमो ए मरियम अन्ना लके हाजा ये कहाँ से आया तेरे पास। गौर से सुने ये वो सैयदा मरियम हैं जो बगैर बाप के एक बच्चे को जन्म देने वाली हैं और ये वलियाँ हैं ये अल्लाह की बड़ी एक करीबी दोस्त हैं जिनको बचपन से ही बल्कि पैदाइश से पहले इनकी तकदीर जो है आप समझें माँ की दुआ से वो बात झलकती है कि मैं इसे आज़ाद करती हूँ अल्लाह तेरे लिए ये तेरे काम करेगी। वो बच्ची जो है वो अब एक बड़ी दुनिया के टॉप इबादत खाने में परवरिश पा रही है और तरबियत पा रही है और उसका कफील जो है जब वो उसके पास आता है तो रिवायात में यह है कि उनके पास बेमौसम के फल होते थे और बेमौसम के ना हो तो फल वहाँ मौजूद होते थे। ये तो यहाँ भी लिखा हुआ है कि उसके पास रिस्क होता था और जब ये वली जो है उसका और कफील जो है वो पूछ रहा है कि ये तेरे पास कहाँ से आया ये कहाँ से आए इसका मतलब ये है कि वहाँ पे उस चीज़ की डिलीवरी मुश्किल थी वरना जाहिर है वो सबसे सीनियर जो आलिम था उसको पता तो होता ये कहाँ से आ गया है लेकिन वो हज़रत मरियम से पूछ रहे हैं ये इस बच्ची की एक करामत है ये अल्लाह की तरफ से आप समझें कि उन्हें एक मौजज़ा अता किया गया है और ये हज़रत ज़करिया की तरबियत जो हो रही है आप सोचें कि ये एक बच्ची स्पेशल बच्ची है और वलिया है ये अल्लाह की और ये इसकी करामत है कि इसके पास खाने पीने की चीज़ें बग़ैर किसी की नॉलेज के मौजूद होती हैं। कालत वो बोली हुवा मिन इंदिल्लाह ये मेरे अल्लाह की तरफ से है। अब यानी कि आप सोचें इस बच्ची की जो तरबियत हो रही है कि अल्लाह की तरफ से तुम्हें कोई भी फल मिल सकता है हो सकता है वो बेमौसम का फल हो सकता है वो हैकल के दरवाजे से ना आया हो कहीं और से आया हो अल्लाह जो है वो कुछ भी कर सकता है ये इस बात की तरबियत है। और ना सिर्फ सैयदा मरियम को ये तरबियत दी जा रही है ये तरबियत इनके कफील और इनके जो मुतवल्ली और इनके जो वाली वारिस हैं वहाँ पे हज़रत ज़करिया उनकी भी ये तरबियत हो रही है कि इसके पास अल्लाह की तरफ से चीज़ें आती हैं जिनकी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं होती किसी के पास। इन्नल्लाहा बेशक अल्लाह यरज़ुकु वो रिज़्क देता है मैं यशाउ जिसे वो चाहता है बग़ैर हिसाब बेहिसाब। ये एक वलिया का कौल है और ये आप समझें कि एक उलूल अज़म पैगंबर की माँ का कौल है कि ये तो अल्लाह के पास से है और बेशक अल्लाह रिस्क देता है जिसे चाहता है बेहिसाब। अब ये मुस्तफ़ैन में से हैं। गौर करें, हम अक्सर पूछते हैं ना कि ये इतने गुनहगार हैं, ये ऐसे लोग हैं, ऐसे रिश्वतें खाते हैं, गंदे सिफारिशें करते हैं, लोगों के हक मारते हैं, कहाँ से आ गया इनके पास ये सब कुछ? फिर हम लोगों की दौलत पे भी तबसरे करते हैं, ज़मीनें खरीद रहे हैं, ये देखो जी बहनों के हक मार लिए। कितनी आसानी से हम लोगों को जज करते हैं। अल्लाह के मुस्तफ़ैन जो हैं वो ये कहते हैं कि अल्लाह तो, ये तो अल्लाह की तकसीम है, जिसे देता है बेहिसाब देता है, बस ठीक है, जो हमें दे रहा है उस पर शुक्र है, जो नहीं दे रहा उस पर सब्र है। ये मुस्तफ़ैन का तरीका है। हुनालिका, वहीं पर। अब ये इतनी प्यारी बात इस बच्ची ने की कि वहीं पर दुआ ज़करिया रब्बहू, दुआ मांगी ज़करिया अलैहिस्सलाम ने अपने रब से। काला, उसने कहा, रब्बी, ए मेरे रब, हबली, मुझे तोहफा दे, मुझे अता कर। हब जो है ना, हिबा करना, बेहिसाब देना, बगैर मांगे भी देना। वहाब अल्लाह का एक नाम है। मिल्लदुन का, अपने पास से, जुर्रियतन, औलाद, तय्यबन, पाकीज़ा। औलाद की दुआ है कुरान में, कितनी कीमती दुआ है और कितनी प्यारी दुआ है। रब्बी हबली मिल्लदुन का जुर्रियतन तय्यबा, मुझे अपने पास से पाकीज़ा औलाद दे। इन्नका, बेशक तू, समीउ दुआ, सुनने वाला है दुआ का। अब इस बच्ची ने, और इतनी प्यारी बच्ची थी और ऐसी खूबसूरत उसने बातें की और ऐसे उसके करामात थी कि ज़करिया अलैहिस्सलाम का दिल उठ गया और उन्होंने कहा कि या अल्लाह मुझे भी ऐसे प्यारे बच्चे, या अल्लाह मुझे भी ऐसी एक अच्छी औलाद दे। और रिवायात में ये है कि ज़करिया अलैहिस्सलाम बुज़ुर्ग थे, काफ़ी उम्र थी इनकी और ये बे औलाद थे। फनादत हूँ, तो आवाज़ दी उसको, एक निदा दी उसको, अलमलाइकतु, एक फरिश्ते ने, वह हुआ क़ाइमुन, जब वो खड़े हुए, युसल्ली, नमाज पढ़ने, फिल मेहराब, अपनी मेहराब में, अपने हुजरे में। तो जब वो हुजरे में नमाज पढ़ रहे थे तो फरिश्ते, पैगंबर थे, वही आती थी उन पे, तो फरिश्ते ने उनको आवाज़ दी, इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह, अन्नल्लाह, ये कि अल्लाह, युबश्शिरु का, तुझे खुशखबरी देता है, बेयहया, यहया अलैहिस्सलाम की, मुसद्दिकम, जो तस्दीक करने वाला है, बिकलिमतिन, अल्लाह बात की, मिन अल्लाह, अल्लाह की तरफ से, अल्लाह के हुक्म की तस्दीक करने वाला है। यानी एक तो बशारत है, खुशखबरी है यहया की, नाम भी अल्लाह ने बताया, और वो तस्दीक करने वाला है अल्लाह के हुक्म की, यानी तूने जो दुआ मांगी थी वो कबूल हुई है और ये अल्लाह के हुक्म की तस्दीक में ये बच्चा तुझे दिया जाएगा। व सैयदन, और वो सरदार होगा, व हुसूरन, हिसार, हिफाजत करने वाली एक बाड़ है या मचान है। तो हुसूर जो है उसका मतलब है कि अपने आप को काबू में रखने वाला, हुदूद में रहने वाला, अल्लाह के अहकामात की पाबंदी करने वाला। व हुसूरन, व नबीयन, और हाँ वो नबी भी है, वो खबर सुनाने वाला है, मिन सालिहीन, नेकुकारों में से। किस कदर खूबसूरत दुआ मांगी गई और किस कदर खूबसूरत जवाब आया है। अब हजरत ज़करिया जो है ये भी मुस्तफ़ैन में से हैं। आगे जो आयत आ रही है, ये आयत कुरान में हमें ये समझाने के लिए रखी गई हैं कि मुस्तफ़ैन चाहे अल्लाह के चुने हुए थे, थे वो इंसान, उनके एहसासात, उनके महसूसात, उनके जज्बात, उनकी सोचें, उनकी बातें इंसानों वाली थी, वो बंदे थे, बंदे बशर थे। तो अब इन्होंने दुआ खुद मांगी है, हजरत मरियम को देख के इन्हें जो मोहब्बत आई है और ये चाहते हैं कि मेरे पास भी ऐसा प्यारा बच्चा हो, तो इन्होंने दुआ मांगी है, ज़ुर्रियतन तय्यबा, और फिर जब नमाज पढ़ रहे हैं तो वही आई है इन पे और उसमें इनको बताया गया है, और खुशखबरी ये है कि वो सरदार होगा और शरीफ, शरीफ नफ्स इंसान होगा, और हाँ नबी भी होगा, और मिनस सालिहीन, नेकुकारों में होगा। काला, इन्होंने कहा, रब्बी, ए मेरे रब, अन्ना यकूनु ली गुलामुन, कैसे होगा मेरे लिए एक लड़का। ये इनकी मासूमियत आप देखें, खुद दुआ मांग चुके हैं लेकिन अब वो बशरी कमजोरी या बशरी लिमिटेशन इनके जहन में है कि मैं तो बहुत बूढ़ा हूं, कैसे होगा? और मेरी बीवी अभी तक उसका बच्चा नहीं हुआ, हम बूढ़े हो गए हैं, वो औरत बांझ है, तो ये क्या कह रहे हैं? काला, इसने कहा, रब्बी, ए मेरे रब, अन्ना यकूनु ली गुलामुन, कैसे होगा मेरे लिए लड़का? और ये आयत जो है, इन आयात को कुरान में इज्जुल मुस्तफ़ैन की आयात कहते हैं, यानी मुस्तफ़ैन अल्लाह के चुने हुए वो लोग, पसंदीदा, जिन्होंने दुनिया में अल्लाह के हुक्म का बोलबाला किया, वो भी आजिज़ हैं, अल्लाह के सामने वो आजिज़ हैं। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट अकीदा है, क्योंकि ये कहना कि किसी को मुस्तकबिल का इलम है, या ये कहना कि किसी की कब्र से हम कुछ मांग लेंगे, या ये कहना कि चूंकि ये मुस्तफैन थे तो इनके ये मोजज़े अभी भी जिंदा हैं, या चूंकि ये मुस्तफैन में से थे तो इनकी ये औलादें जो हैं उनमें भी ये स्पेशल स्पेशल बातें हैं, अल्लाह ताला ने कुरान में कहीं ऐसी कोई बात नहीं की। अल्लाह ने कुरान में हमें सिर्फ इज्जुल मुस्तफैन समझाया है कि मुस्तफैन, अल्लाह के चुने हुए बंदे, वैसे ही आजिज़ थे अल्लाह के सामने जैसे हम आम बंदे बशर अल्लाह के सामने आजिज़ हैं। तो अब ये उनको आजिज़ी से कह रहे हैं कि कैसे होगा मेरे लिए लड़का। वक़द बलगनी अल किबरो, जबकि तहकीक, बलगनी, पहुंच गया मुझको, अल किबरो, बुढ़ापा, व मरअती, और मेरी बीबी, आखिर वो तो बांझ है, अभी तक उसके बच्चे, जवानी से लेके अभी तक उसने, शायद उन्होंने कंसीव ना किया, तो वो बांझ है, जाहिर है। काला, उसने कहा, फरिश्ते ने कहा, कजालिक अल्लाह, इसी तरह अल्लाह, यफअलु मा यशा, वो करता है, वो कर गुजरता है जो वो चाहता है। ये भी इनकी तरबियत का एक मरहला है। हजरत जकरिया को हजरत मरियम की प्रेगनेंसी के लिए तैयार किया जा रहा है कि इस उम्र में और इस बांझ औरत के साथ भी तुम्हें अल्लाह बच्चा दे सकता है, और इस मासूम बच्ची को अल्लाह बेमौसम के फल और रिज्क और नेमतें देता है बगैर तुम्हारी नॉलेज के। तो एक दिन ऐसा आएगा जब तुम्हारी अक्ल हरगिज नहीं कबूल करेगी वो करामत जो ये बच्ची करे, बच्ची से जहूर होगा जिस करामत का, लेकिन तुम्हारी तरबियत इसीलिए की जा रही है ताकि तुम वहां पर भी अल्लाह का अमर वैसे ही कबूल करो जैसे ये सारे उमूर तुम कबूल कर रहे हो। अगर अल्लाह का कोई अमर हमारी समझ में ना भी आए तो कुरान को और अल्लाह के हुक्म को अपनी तरजीह बना के रखना चाहिए। इसी तरह अल्लाह कर गुजरता है जो वो चाहता है। काला, उसने कहा, रब इजअल, ए मेरे रब, बना दे, ली आयतन, मेरे लिए एक निशानी। अल्लाह, मुझे तो अब वो मखमसे में है, कंफ्यूज हैं, तो अपनी मासूमियत में वो अल्लाह को कह रहे हैं कि या अल्लाह मुझे एक निशानी दे दे, मुझे समझ नहीं आ रही है। काला, उसने कहा, फरिश्ते ने कहा, आयतु का, तेरी निशानी, अल्लाह, तुकल्लिमन्नास, ये कि तू बात नहीं करेगा लोगों से, 3 अय्यामिन, 3 दिन, इल्ला, मगर, रमजन, इशारे से। 3 दिन के लिए हजरत जकरिया की जबान बंद हो गई। तमाम जो दुनिया के मजाहिब हैं, जो दीन है, जो योगिक डिसिप्लिन्स हैं, यहूद का जो मजहब है, क्रिश्चियनिटी है, और इस्लाम में गो के ये बात नहीं है, लेकिन इन बाकी सब डिसिप्लिन्स में चुप का रोजा पाया जाता है। इवन हिंदू एक चुप का रोजा, या मतलब वो बाकायदा कहते हैं कि वी आर इन साइलेंस, और वो ऑब्जर्व इसलिए किया जाता है कि इंसान बात ना करे और वो अंदर अपने ऊपर फोकस करे और अपने अंदर अपने आप को सोचे और खोजे। तो ये चुप का रोजा जो है, ये यहां से, ये यहूद के मजहब में भी यहीं से आया है, क्रिश्चियनिटी में भी द साइलेंस या द ऑब्जर्वेशन ऑफ साइलेंस जो है वो यहां से आई है। तो अल्लाह ने कहा कि तेरी निशानी ये है कि तू 3 दिन लोगों से बातें नहीं करेगा मगर इशारे से। वस्कुर रब्बा का, और तू याद कर तेरे रब को, जब तू खामोश हो, लोगों के साथ ना इंटरेक्ट करता हो, तो अल्लाह को याद कर, कसीरन, बहुत, वसब्बिह, और तस्बीह कर, बिलआशिय्ये, शाम के वक्त, वल इबकार, और सुबह के वक्त। तो यहाँ पे किस्सा, चूंकि रुकू ख़त्म हो रहा है, इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे, लेकिन आज जो जिक्र मैंने आपके सामने किया और जो जिक्र आगे चल रहा है, ये खास तौर पे مستفین کا ذکر ہے، بہت قیمتی ذکر ہے، اپنے ذہن میں رکھیں اس کو. اللہ ہم سب کو قرآن پڑھ کے اس کو سمجھنے والا، اس پہ عمل کرنے والا، اس کو اپنی ترجیح بنانے والا اور اس کو آگے پہنچانے والا بنا دے. آمین ثم آمین.